प्रस्तुत करता है कार्यक्रम सप्ताह के श्रोता, एक श्रोता से बातचीत और उनकी पसंद के चंद फिल्मी गीत।
कार्यक्रम सप्ताह के श्रोता, सुनने वाले सभी श्रोताओं का हार्दिक अभिनंदन करते हैं हम अपने अर्पा रेडियो के आज के इस अंक में। अर्पा रेडियो के कार्यक्रम सप्ताह के श्रोता में आज हम किस श्रोता से करने वाले हैं बातचीत, ये हम आपको बताते ही हैं, लेकिन अपने सप्ताह के श्रोता के बारे में छोटी सी जानकारी मैं देना चाहूँगा आप सभी श्रोताओं को कि हमारे जो आज के सप्ताह के श्रोता हैं वो एनसीसी के कैडेट कोर्स के वो सदस्य रहे हैं, साथ ही साथ वो भोपाल में रहकर उन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी की है और अभी विगत दिनों पहले ही एक पुत्र के वो पिता भी बने हैं। और उसके साथ ही साथ बहुत सारी बातें हैं मैं नहीं बताता, सीधे उन्हीं से जानते हैं। तो बहुत बहुत स्वागत है मितान जी हमारे कार्यक्रम सप्ताह के श्रोता में, हम संपूर्ण परिचय आपका जानना चाहेंगे अपने श्रोताओं के लिए।
सभी श्रोता मल्लम और नमस्कार, हृदय से प्रणाम, मैं दीपेश वर्मा, ग्राम पीपल रोड सरगांव से।
बहुत बहुत स्वागत है दीपेश वर्मा जी हमारे सप्ताह के श्रोता कार्यक्रम में।
धन्यवाद सर।
तो नाम तो हमारे श्रोताओं ने जान ही लिया है मितान जी, अब हम आपके बारे में जो है आप परिचय के रूप में आपके जीवन के बारे में, आपके परिचय के रूप में परिवार के बारे में सारी चीज़ें जानना चाहेंगे, पढ़ाई लिखाई कहाँ से हुई और क्या क्या चीज़ें आपसे जुड़ी हुई वो कृपया हमें बताएं।
मेरी पढ़ाई मध्य प्रदेश के एक शहर है जो फिलहाल अभी राजधानी है भोपाल, वहाँ गवर्नमेंट हाई सेकेंडरी स्कूल कोटरा में मैंने 10वीं तक पढ़ाई की है सर, और उसी स्कूल में मैं एनसीसी का कैडेट भी रहा हूँ 2 साल, और उसमें मैं सीनियर पोस्ट में था, काफी बच्चों को मैंने सिखाया भी है, और लगभग मैं 3 बार कैंप जा चुका हूँ सर।
अच्छा।
अपने स्कूल के तरफ से और काफी सारे श्रोताओं के साथ कार्यक्रम हम सुनते रहते हैं सर आपके। जी सर।
तो ये तो आपका परिचय हो गया कि आपने पढ़ाई कहाँ से की, कहाँ तक की पढ़ाई, ये सारी चीजें। आपके परिवार के बारे में हम जानना चाहेंगे।
सर ज्यादा बड़ा परिवार नहीं है, अभी फिलहाल 2 भाई 1 बहन, माता पिता यहीं गांव में ही हैं। बड़े भाई अभी भोपाल में जो हमारा वर्तमान एड्रेस है वहीं पर है, उनकी भी शादी हो गई है और 2 बच्चे हैं, वो भी अपने परिवार के साथ वहीं सेटलमेंट है, और त्योहार में और कुछ कार्यक्रम होता है घर में, फंक्शन होता है तो आते रहते हैं सर। और छोटी बहन भी है, उनका भी विवाह हो गया है और वो बलौदा बाजार के पसवानी अकोली पसवानी गाँव में गई हुई है सर।
अच्छा जी, बहुत बढ़िया। तो आपके बड़े भाई साहब जो हैं वो भोपाल में रहते हैं सर?
जी हाँ जी सर।
जी जी। तो वो क्या करते हैं?
वो वहीं पर सर प्लम्बर काम करते हैं।
अच्छा, उनका काम करते हैं मतलब। तो पढ़ाई के सिलसिले में ही मतलब आपका भोपाल जाना हुआ था ऐसा है बता दूँ?
बचपन में ही जब माता पिता की शादी हुई थी तो स्टार्टिंग में ही चले गए थे सर, क्योंकि उस समय काफी गरीब थे, पिताजी बताते हैं कि ज्यादा जमीन जायदाद भी नहीं थी और परिवार लंबा हो जाने के कारण खाने पीने में भी काफी दिक्कतें होती थी, तो सभी 4 भाई होते हैं हुआ करते थे हमारे पिताजी, तो सभी कमाने के सिलसिले में भोपाल चले गए थे और वहाँ ऐसे ही पहले धीरे धीरे सर झुग्गी बना के अपना गुजर व्यापन करते थे, फिर धीरे धीरे उनको मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा मकान उपलब्ध हुआ और आज वहीं पर हम लोग बड़े भैया लोग वहीं पर रहते हैं और हमें शासकीय मकान उनके द्वारा सरकार के द्वारा मिला हुआ है सर वहाँ पर।
अच्छा, मतलब ऐसा है कि पिताजी भाई वगैरह जो है वो भोपाल में रहते हैं और आप जो हैं वापस छत्तीसगढ़ में हैं भी?
जी सर।
तो वापस छत्तीसगढ़ आना कैसे हुआ फिर, आपका किस उद्देश्य के साथ आपका आना हुआ छत्तीसगढ़ हमारे?
अब सर छत्तीसगढ़ से जुड़े हुए हैं बचपन से ही पिताजी, तो छत्तीसगढ़ कल्चर जैसे शादी वर विवाह हो तो छत्तीसगढ़ में ही होना था, जो कि मध्य प्रदेश भी 2001 में छत्तीसगढ़ से अलग हुआ था, छत्तीसगढ़ अलग हो गया था, तो इस चक्कर में वहाँ ज्यादा छत्तीसगढ़ी लोग नहीं रह गए और लड़कियां जैसे विवाह के लिए छत्तीसगढ़ तो आना ही पड़ता था, तो विवाह की जब हमारी उम्र हुई तो सभी लोग पिताजी के साथ हम लोग यहाँ पर आ गए, फिर रिश्तेदारों ने फिर हमारे लिए लड़कियां खोज कर हमारा विवाह संपन्न किए सर।
वाह बहुत बढ़िया। तो कहाँ ससुराल बनाया आपने?
सर यही नजदीक में है, 35 किलोमीटर दूर भाटापारा हसदा गाँव है सर, धुर्रा बांधा के पास है सर।
अच्छा अच्छा, धुर्रा बांधा, धुर्रा बांधा मितान हमारे रहते हैं वहाँ। प्रमोद मितान जी, बहुत बढ़िया। तो चलिए आगे बातचीत करते रहेंगे आपसे मितान जी, इस कड़ी में आपकी पसंद का पहला गीत जानना चाहेंगे हम।
जी सर
बताएं।
पहला गीत है फिल्म शराबी से, गीत के बोल है मुझे 9 लाख मंगवा दे रे ये सैया दीवाने।
बहुत बढ़िया। बहुत अच्छा गीत आपने चयन किया है अपनी पसंद का, तो आपकी पसंद पर सुनते हैं ये पहला गीत।
मुझे लोलता मंगा दे रे ओ सैया दीवाने, माथे पे झूमर कानों में झुमका, पाँव में पायल लिया हाथों में ओ गगना, मुझे लोलता मंगा दे रे ओ सैया दीवाने, तुझे मैं तुझे मैं तुझे गले से लगा लूंगी ओ सैया दीवाने, मुझे अंगिया सिला दे रे ओ सैया दीवाने।
दीपेश वर्मा जी से हमारी हो रही है श्रोताओं बातचीत सप्ताह के श्रोता क्रम में। उनकी पसंद का पहला गीत हमने सुना फिल्म शराबी से। आगे उनसे करते हैं बातचीत। और अब हम दीपेश जी आपसे जानना चाहेंगे कि आपने वहाँ पढ़ाई की भोपाल में, तो भोपाल में जैसा रह करके आपने बताया कि पढ़ाई भी कर, एनसीसी से भी आप जुड़े रहे हैं, तो एनसीसी से जुड़े हुआ कुछ रोचक बात होगा, क्योंकि एनसीसी के संदर्भ में मैं बहुत सी चीज़ें ऐसा जानता हूँ कि वो कुछ ना कुछ कैंप के दौरान होते रहता है बदमाशी। तो कुछ कुछ आपकी ऐसी कुछ यादें हैं?
जी सर, जब पहले हम जूनियर थे तो काफी, तो एक तो डिसिप्लिन काफी रहना पड़ता है सर एनसीसी में। एनसीसी का मोटो ही है एकता और अनुशासन और डिसिप्लिन, और काफी हमें डिसिप्लिन सिखाया गया, काफी हमें पनिशमेंट भी मिलती है सर उसमें अगर जरा सी भी गलतियां हो जाती है। और बचपन से ही आर्मी के बारे में जाने, आर्मी में जाने की इच्छुक थी और इससे जुड़ा हुआ है, तो काफी हमें मदद मिली इससे एनसीसी में रहकर। और जब हम एक साल कंप्लीट किया, अपने सीनियर हम स्वयं बने, तो हमें एहसास हुआ नहीं, जो हमारे सर जो हमें कह रहे थे, सिखा रहे थे, वो काफी अच्छी जानकारी दे रहे थे, और किस प्रकार से समाज में रहना, किसी गरीबों की मदद करना सर। हम लोग जैसे कहीं पर नवरात्र में जो एनसीसी कैडेट के द्वारा योगदान होता है उनमें भी भाग लिए थे सर, मध्य प्रदेश में।
जी 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 जी,
जो रात में लाइनों को व्यवस्था करना, पार्किंग को देखना, उस जगह में हमारी ड्यूटी लगती थी स्कूल के द्वारा, हम लोग जाते थे सर।
बहुत बढ़िया, बहुत ही अच्छी बात। ये बात मैं इसलिए पूछा मितांजी क्योंकि मैं भी एनएसएस से जुड़ा रहा हूँ अपने कॉलेज के दिनों में, तो एनसीसी और एनएसएस जो लगभग जो है साथ ही साथ, हम लोगों का संडे टू संडे हम लोगों का जो क्लास चलती थी ना, तो मैं देखता था, कैंप भी जब लगता था तो उसमें हमारे मित्र रहते थे, तो मैं भी एनएसएस के माध्यम से मैं रिपब्लिक डे कैंप तक मैं भी गया हूँ वहाँ दिल्ली में।
जी सर, तो उसका पूरा शेड्यूल होता है सर, आपको सुबह 6 बजे उठ के व्यायाम करना है,
जी जी एकदम,
7 से 7:30, 8 बजे तक आपको फ्रेश होना है, फिर आपको परेड में शामिल होना है, फिर उसके बाद नहाना है, फिर खाना, पूरा शेड्यूल होता है सर, एक एक टाइमिंग का फिक्स हिसाब लिया है, हिसाब से तैयारी करना पड़ता है सर।
बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, कड़े अनुशासन के बीच में जीवन जीने की जो है वो सीख दी जाती है एक तरह से समाज के साथ जुड़कर। बहुत अच्छी बात, तो बहुत ही अच्छा लगा जानकर कि आप एनसीसी के कैडेट रहे हैं। तो फिर उसके बाद आगे आपने, जैसे कि आपने कहा कि आप आर्मी में जाना चाहते थे, तो आगे प्रयास किया फिर आपने?
सर मेरी पढ़ाई बचपन से ही थोड़ी कमजोर थी और मुझे हिंदी लिखने में काफी मिस्टेक होता था, तो मैंने 10वीं के बाद ही पढ़ाई छोड़ दी, क्योंकि आगे विषय और ज्यादा कठिन होता गया, जैसे जैसे आप उम्र के पढ़ाव में बढ़ते जाते हैं उस प्रकार जीवन आपका कठिन और मजबूत होते जाता है, इसी प्रकार मुझे पढ़ाई में दिक्कत होने लगी, तो इस बीच में मेरी पढ़ाई छूट गई सर।
तो पढ़ाई छूटने के बाद फिर आपने क्या किया, पढ़ाई छोड़ने के पीछे कोई विशेष कारण?
पढ़ाई छूटने का ऐसा सर क्या है, एक बार 10वीं में मेरी इंग्लिश में सप्लीमेंट्री आ गई थी, तो इंग्लिश में भी ऐसे भी बहुत कमजोर था, तो मेरा परीक्षा जो इंग्लिश का दूसरा जो सप्लीमेंट्री पेपर था वो 1 महीने बाद था 1.5 महीने बाद, और उस बीच में हमारा स्कूल खुल चुका था।
अच्छा अच्छा जी।
तो उस बीच में जब मैं क्लास में बैठता था तो मैडम जी कहती थी कि आपका सप्लीमेंट्री है, आप उसी क्लास में बैठो जिस क्लास में आपकी आई है, और आगे के कक्षा में बैठता था तो उसमें भी मुझे दिक्कत होती थी कि मैं अगर वापस 10वीं में गया तो पीछे का सब्जेक्ट रुक जाएगा, तो इस बीच में मैं काफी कंफ्यूज था, तो मैं बीच में स्कूल ही नहीं गया।
अच्छा।
तो ऐसे ऐसे 1.5 महीने की पढ़ाई छूट गई, फिर मुझे ऐसा लगा कि नहीं अब कुछ ज्यादा ही समय हो गया, अब नहीं पढ़ना, फिर मन ही नहीं किया सर।
अच्छा।
इस बीच में मैं पिताजी के साथ कुछ रोजमर्रा के कामों में भी जाना लगा, और पैसे के लालच में सर, एक बात तो यही है सर, पैसे के लालच में पढ़ाई भी बहुत छूट गई मेरी।
होता है, एक समय के बाद कुछ चीजों के लिए ऐसा जरूरत बढ़ती है, तब जो प्राथमिक जरूरत की चीजें छूट ही जाती हैं।
जी सर, पढ़ाई छूटने का कारण यही है सर कि मैं काम करने लगा, कुछ जेब में 4 पैसे आने लगे ना, तो सर ऐसा लगा कि नहीं अब पढ़ाई नहीं, अब तो घर के लिए पैसे ही इकट्ठा करना काफी जरूरी है इस टाइप इस चक्कर में हमारा पढ़ाई भी छूट गया सर।
तो कहने का मतलब ये है कि आपने परिवार के प्रति जिम्मेदारी समझी अपनी और पढ़ाई को किनारे रखकर परिवार के प्रति अपने समर्पण को बनाए रखा, ये वाली बात है
जी सर।
जो बहुत अच्छा बात है, तो आगे आपसे बातचीत तो करेंगे ही। इस पड़ाव में आपकी पसंद का दूसरा गीत जानना चाहेंगे हम।
सर फिल्म हमें तोहफा से गीत सुना दीजिएगा। गीत के बोले अलबेला मौसम कहता है स्वागतम।
बढ़िया, चलिए सुनते हैं आपकी पसंद पर ये दूसरा गीत।
तुझे हर खुशी मिले लंबी जिंदगी मिले देती है ये दुआ।
अलबेला मौसम कहता है स्वागतम।
अलबेला मौसम कहता है स्वागतम।
तोहफा फिल्म का गीत अभी हम सुन रहे थे श्रोताओं, दीपेश वर्मा जो कि हमारे सप्ताह के श्रोता हैं उनकी पसंद पर। पुनः स्वागत दीपेश जी हमारे कार्यक्रम में। दीपेश जी, जैसा कि आपने बताया कि आपने एक लंबा समय भोपाल में गुजारा है अपनी पढ़ाई के संदर्भ में, काम के संदर्भ में, तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि भोपाल जो है अपने आप में बहुत ही सुंदर जगह है, बहुत ही रमणीक है, बहुत ही घूमने के हिसाब से, सारी चीज़ों को के हिसाब से बहुत ही अच्छा, तो हम आपके माध्यम से भोपाल के बारे में जानना चाहेंगे, तो बताएं हमें भोपाल के बारे में।
भोपाल काफ़ी पहाड़ी वाला क्षेत्र है सर, ठंडा माहौल है वहाँ का और झीलों की नगरी कहा जाता है भोपाल को।
जी जी जी,
क्यों काफी बड़ा है, जो भोपाल सिटी है वो झीलों से घिरा हुआ है। जिस बीच में हम लोग रहते थे नया बसेरा कोटरा में, वहाँ पर एक भदभदा नाम से बहुत बड़ा तालाब है, वो काफी फेमस है सर भोपाल में।
अच्छा जी,
और वहाँ काफी डेवलपमेंट हो चुका है और अभी तो मुझे काफी साल हो गए, लगभग 5-6 साल हो गए, नवरात्रि में गया था 5 से 5 साल पहले, तो अभी तो डेवलपमेंट हो रहा था, काफी घर के पास ही 5-स्टार होटल भी बना है और काफी बड़ा पर्यटन क्षेत्र भी बना है जिसका नाम सैर सपाटा है सर।
अच्छा, अरे वाह, क्या है वहाँ सैर सपाटा में?
सैर सपाटा में सर जैसे शाम को म्यूजिक कॉन्सुमेंट होता है ना सर, पानी के द्वारा फुहारे तालाबों में, वोटिंग जी हाँ वोटिंग भी होती है वहाँ, पूरा लाइटों से पूरा सजा है सर वो पहाड़ जी सर।
बहुत ही अच्छा लग रहा है, क्योंकि मेरा भी जाना हुआ था भोपाल बहुत पहले एक दो बार, तो मैं देखा था, तालाब तो था ही, और अभी देखा जाए तो जो हमारे फिल्म इंडस्ट्रीज के जो जाने माने डायरेक्टर्स हैं उनको, प्रकाश झा जी को भी बहुत ज़्यादा वो प्रभावित करता है वो शहर, इसलिए बहुत सी फिल्मों में आप कुछ भोपाल की झलक देख सकते हैं।
जी सर, उनके फिल्मों में हमने भाग भी लिया था, फिल्म थी,
अरे वाह बताएं,
फिल्म से अजय देवगन की थी, फिल्म का नाम
गंगा जल था क्या?
नहीं सर, गंगा जल नहीं,
राजनीति
सर, राजनीति, राजनीति, हाँ सर, राजनीति थी सर, वो जो हमारे घर के पास शूट हुई थी, लगभग 3 महीने का उनका वहीं पर काफी बड़ा सेट बना हुआ था, घर के जस्ट सामने ही सर उनका बहुत बड़ा सेट बना हुआ था और पहली बार हमने हीरो हीरोइनों को वहाँ पर देखा था।
अरे वाह, किसका किसका दर्शन आपने किया था?
सर उसमें लगभग उन 2-3 फिल्मों की उन्होंने शूटिंग की जिसमें अजय देवगन जी, कैटरीना कैफ जी, रणवीर कपूर जी और उनकी पत्नी काजोल जी भी वहीं पर थी, नाना पाटेकर भी वहीं पर शूटिंग में आए हुए थे, और सर अमिताभ बच्चन की भी एक फिल्म बनी है उसी जगह में,
आरक्षण है शायद,
आरक्षण फिल्म है।
जी जी जी, हाँ हाँ, तो आपने भी अभिनय किया है बता रहे, तो किस फिल्म में आपने अभिनय किया है?
सर वहाँ कुछ सब्जियों का मतलब ग्रामीण क्षेत्र का कुछ वो बना हुआ था सेट।
अच्छा अच्छा,
तो वहाँ ठेले पे सब्जी बेचने वाला कुछ वो था,
अच्छा
माहौल था, तो उसी जगह में हम खड़े हुए थे।
वाह बहुत बढ़िया,
पिक्चर में हमारी कोई इमेज नहीं आई हुई है सर।
हाँ नहीं, कोई इशू नहीं, वो रहता है, वो सीन वर्क बोलते हैं उसको फिल्म उसके लिए, यहाँ से ठीक है, आप उस प्रोसेस में रहिए, बड़ी बात है। तो वो कैसा अनुभव रहा ये भी बताए हमें।
सर उसमें तो काफी भीड़ थी और मजा भी आ रहा था सर, सुबह से ही एक शूट को, बारीक चीज को शूट करने के लिए पूरा दिन भर वेस्ट हो जाता था और काफी समय लगता था शूटिंग के लिए, हम लोग सोचते थे कि मजाक होता है, बहुत जल्दी बन जाती होगी फिल्म, काफी बारीक चीजों का ध्यान रखा जाता है सर फिल्म लाइन में।
बिल्कुल बिल्कुल, तो उस सीन के लिए चयन किया गया था आपका या रेंडमली ही बुला लिया गया था, कि कैसे मतलब उस फिल्म से जुड़े, हम दरअसल ये जानना चाहते हैं।
सर ये एक वो होते हैं जैसे हर जगह एक ठेकेदार टाइप के होते हैं जो अपने अपने डिपार्टमेंट को कुछ काम दे देते हैं।
हाँ, ठीक है,
तो हमारे जो क्षेत्र में एक भैया थे जिनका नाम दीपक चंदेल था, वो उनको उनके पास ये आया कि हमें 50 लड़कों की जरूरत है, तो हमारे मोहल्ले के होने के नाते उन्होंने सभी मोहल्ले के जितने भी नौजवान युवक थे उनको दिया काम में और फिल्म में, और उनके द्वारा हमें मजदूरी भी मिली थी।
अरे वाह, मेहनताना दिया गया था।
दिया गया था सर
जी। कितने पैसे का भुगतान आपको किया गया था उस सीन के लिए?
उस समय सर 250 रुपए मतलब पर डे चल रहा था।
अरे वाह, तो
ज्यादा समय की शूटिंग नहीं थी सर, 12 बजे फ्री हो जाते थे।
अच्छा, तो कितने दिन की शूटिंग थी आपकी?
लगभग सर 25 दिन हमके फिल्म में अपना सहयोग दिया था।
25 दिन?
जी सर।
तो पूरे एक सीन के लिए 25 दिन लग गया
सर? और बाकी सीजन वो जैसे और कुछ काम होता था उनमें भी जाना पड़ता था ना सर, एक शूट में था लेकिन हर जगह वही नहीं जाते थे, और कुछ काम था उसमें भी हम लोग लग गए थे।
अच्छा, ओके ओके, मतलब अलग अलग तरह के कामों के लिए, अलग अलग तरीके की चीजों के लिए आपको उस फिल्म से जोड़ा गया था।
हाँ जी सर।
वाह वाह, बहुत ही अच्छी बात। तो ये और आपसे बातचीत आगे करेंगे इस फिल्म के संदर्भ में ही, फिलहाल आपकी पसंद का तीसरा गीत जानना चाहेंगे।
तीसरा गीत सर फिल्म है सोनी महिवाल। और गीत के बोल है, बोल दे मीठे बोल सोनियो, भेद दिले के खोल सोनियो।
बढ़िया, आपकी पसंद का चौथा गीत पहुंचाते हैं आपके साथ साथ हमारे आज के कार्यक्रम के श्रोताओं तक।
नाम खुदा का ले जरा सबक शुरू कर बिस्मिल्ला,
सोनी महिवाल फिल्म का गीत दीपेश वर्मा जी की पसंद पर हम सुन रहे हैं, साथ ही साथ आप भी सुन रहे हैं श्रोताओं। पीपल लोड से हैं हमारे आज के सप्ताह के श्रोता। इस गीत से पहले हम जान रहे थे हमारे दीपेश वर्मा जी से कि वो प्रकाश झा की फिल्मों से भी जुड़े हुए हैं, और एक समय 25 दिन का करीब उन्होंने एक फिल्म में अलग अलग तरह से काम भी किया है। तो दीपेश जी, आपने प्रकाश झा जी को करीब से देखा होगा, समझा होगा, जाना होगा, तो उनके बारे में कुछ बता सकते हैं आप?
सर वो दिखने में बहुत ही सिंपल, बहुत ही सिंपल है, बिल्कुल नॉर्मली ड्रेस पहनते हैं और बोलचाल भी बहुत नॉर्मली थे, लेकिन अगर किसी सूट को बार बार मिस्टेक किया जाए तो काफी जोर से चिल्लाते भी हैं सर।
अच्छा,
ये हमने देखा। और अगर हम लोगों के बीच में अगर वो खड़े हो तो कोई भी नहीं कह सकता कि वो एक फिल्म अभिनेता या डायरेक्टर है, बिल्कुल नॉर्मली सर वो तो ऐसे जो अपने दिन सुबह के जो होते ना सर शॉर्ट, जिसे हम केफरी या चड्डा बोलते हैं, उसी में दिन भर अपना गुजारा करते थे, घूमते थे हाथ में एक माइक लेके और बिंदास तरीके से घूमते थे। उनके लिए कोई सिक्योरिटी नहीं थी, और वो भी सर हमारे शूटिंग के बीच के मतलब किसी से वो नहीं था कि दिक्कत नहीं थी, सभी उनको अच्छे से प्यार मोहब्बत से बात करते थे, और किसी से ज्यादा चिल्ला कर भी बात नहीं करते थे जो हमारे वर्कर थे काम करने वाले।
तो प्रकाश झा जी के प्रोडक्शन हाउस में से आप जुड़े रहे हैं दीपेश जी, तो किन बड़े कलाकारों से मिलना हुआ आपका इस पूरे फिल्म शूटिंग के दौरान?
ऐसे तो सर अजय देवगन से ही बस पीछे खड़े होके फोटो खिंचवाई थी, फिर उसके बाद किसी ज्यादा अभी बड़े अभिनेता के साथ तो फोटो ऐसे नहीं हो पाया था।
अच्छा नहीं, चलिए ठीक है, मतलब उनसे मिलना हुआ है एक तरह से।
हाँ, मिलना हुआ था सर।
बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छा लगा जान करके कि आप हमारे फिल्म इंडस्ट्रीज के एक जाने माने डायरेक्टर प्रकाश झा जी के प्रोडक्शन से भी जुड़े रहे। तो अब इसके साथ ही साथ अब हम आपके गांव पीपर लोड के बारे में जानना चाहेंगे मितान जी।
जी जी, मेरा गांव मुंगेली जिला से लगभग वही 30 किलोमीटर अंदर है सर, लास्ट में पड़ता है। और मेरे गांव के लगभग 10 या 12 किलोमीटर में 3 राज्यों का भी सीमा है सर।
अच्छा, कौन कौन?
अगर आपके तरफ जाए तो जैसे ही हम लोग सरगांव मनियारी पुल पार करते हैं तो हम मना बिलासपुर जिला मिल जाता है। और इस साइड हमारे गांव के बगल में ही 10 या 8 किलोमीटर के दूर में ही बेमेतरा जिला मिल जाता है।
अच्छा जी जी।
और सर पूरब में जस्ट पूरब में लगभग वही 15 किलोमीटर जाना माना प्रसिद्ध मंदिर है जहाँ ताला मेला लगता है, उससे ताला मेला उत्सव होता है, वहाँ बलौदा जिला लग जाता है सर।
अच्छा
जी सर, हमारा गाँव बीच में है सर, ज्यादा दूर तीनों जिले से कांटेक्ट में है सर।
और आपके गांव में देखने घूमने लायक क्या चीज है मितान जी?
हमारे गांव में सर ऐसा ज्यादा घूमने लायक नहीं है, 12 महीना यहाँ मजदूरी मनरेगा के तहत काम चलता रहता है, अभी लगभग सर 3 महीने से ऊपर हो चुके जो मनरेगा का काम चल रहा है। और अभी भी चल रहा है, अभी घर में कुछ काम आ जाने के कारण हम तो नहीं जा पा रहे हैं। और गांव में खेती भी अच्छी होती है, अभी धान की खेती है हर जगह, और जिनके पास पानी का साधन नहीं है वो तिवरा और जो चने की फसल है और राहर की फसल है इनका भी फसल लेते रहते हैं सर, सब किसान। अभी गांव में चैत्र नवरात्र की तैयारी पूरी होने वाली है सर, क्योंकि आज रामनवमी है और गांव के ही जस्ट महामाया मंदिर है वहां पर विसर्जन की तैयारी हो रही है, क्योंकि अभी तो फिलहाल हम लोग खेत में है, उनका साउंड आ रहा है।
तो आप पूरे टाइम खेती किसानी का ही काम करते हैं मितान जी, या इसके अलावा और कोई भी व्यवसाय के तौर पे कुछ काम करते हैं?
नहीं सर, मैं मध्य प्रदेश में रहकर ही राजमिस्त्री बन गया था और मैं राजमिस्त्री के साथ साथ घरों में डिजाइन का भी काम करता हूँ और साथ ही मैंने 2 या 3 साल टेलर का काम भी किया था, पेंट शर्ट भी सिल लेता हूँ।
अरे वाह
जी सर। और इसके बाद में पेंट शर्ट जब सिल रहा था ना सर, तो मुझे जो मेरे गुरु थे जिन्होंने मुझे सिखाया वो कटिंग नहीं सिखा पा रहे थे मुझे।
अच्छा,
तो इस चक्कर में मैंने छोड़ दिया जैसा समय लग रहा है ऐसा कह के। तो उनसे मैंने बात भी की थी सर कटिंग सिखा दो, तो उन्होंने बोला अभी कटिंग नहीं सीख पाओगे तुम ऐसा। तो मैं ये मिस्त्री राजमिस्त्री होते उस लाइन में चला गया, फिर वहाँ प्लास्टर चुनाई और ये डिजाइन का काम सीखने के बाद अभी गाँव में ये काम चलता है ना सर प्रधानमंत्री आवास के थ्रू, वहीं जाना होता है सर।
बहुत बढ़िया, मतलब आप लगातार व्यस्त रहते हैं अपने काम के संदर्भ में, खेती किसानी के भी संदर्भ में। तो खेती किसानी में भी धान गेहूँ के अलावा और क्या कर लेते हैं आप मितान जी?
सर धानी बस यहाँ धान की खेती ज्यादा होती है।
अच्छा, तो जितना हमको नॉलेज है मितान जी की खेती किसानी के संदर्भ में, हम जितना जानते हैं लगातार धान की फसल नहीं लेनी चाहिए ऐसा हमने सुना है, क्योंकि पानी की किल्लत हो जाती है, जमीन की उर्वरक क्षमता भी खत्म होती है, तो उसके लिए फिर आप अल्टरनेट कुछ दूसरा उपज क्यों नहीं लेते हैं आप?
सर ऐसे तो हमारे पास बोर नहीं है, अभी जो धान की फसल है वो भी 1 साल लीज में लिया हुआ है, जमीन है जो कि किसी दूसरे किसान का है,
अधिया बोलते हैं
जिसको, गहना रखा गहना। अच्छा। तो उनको क्या पैसे की जरूरत थी तो हमने उनका जमीन गहना रखा।
अच्छा,
और वहीं पर नजदीक में ही एक बोर है, ट्यूबवेल है, उनसे भी पैसे से पानी लिया गया और उसी के संदर्भ में ही किसान धान की फसल डली हुई है सर, हमारे पास ऐसे खुद का ट्यूबवेल नहीं है सर।
अच्छा अच्छा, खुद की खेती है कि नहीं?
खुद की खेती है सर लगभग 3 एकड़, लेकिन पानी का साधन नहीं है सर हमारे पास।
अच्छा अच्छा, मतलब पानी की कमी के चलते आप दूसरा फसल आप नहीं ले पाते हैं ऐसा?
जी सर, जमीन है क्या है काफी अलग अलग जगह में है और टुकड़े टुकड़े में है सर, जैसे 1 एकड़ है कहीं, फिर कहीं पर 1/2 एकड़ और कहीं पर 75 डिसमिल, ऐसा टुकड़े टुकड़े में हर क्षेत्र में बटा हुआ है, तो एक जगह ना होने के कारण ट्यूबवेल भी नहीं करवा पा रहे हैं सर।
एक चटनी है मतलब पूरा।
जी सर।
नहीं ठीक है, समय के हिसाब से और समय के साथ साथ ही खेती किसानी को भी जिंदा रखना ज्यादा जरूरी है, ये अच्छी बात है। तो मितान जी चौथा गीत, पसंद का गीत बताएं आप हमें।
जी सर, फिल्म है जीने नहीं दूंगा और गीत के बोल है तुम याद ना आया करो।
बिल्कुल, चलिए जीने नहीं दूंगा फिल्म का गीत आपकी पसंद पर सुनते हैं दीपेश जी, और साथ ही साथ श्रोताओं को भी सुनवाते हैं।
तुम याद ना आया करो,
तुम याद ना आया करो, ये मधुर संगीत हम सुन रहे थे दीपेश वर्मा जी की पसंद पर। दीपेश जी आज हमारे सप्ताह के श्रोता बने हुए हैं और उनसे बहुत सारी बातें हुई उनके जीवन के संदर्भ में, परिवार के संदर्भ में, पढ़ाई लिखाई के संदर्भ में, फिल्म लाइन से भी वो जुड़े रहे हैं उसके संदर्भ में भी बातचीत हुई, और साथ ही साथ गाँव के बारे में भी हमने उनके जाना है। अब दीपेश जी हम आपसे जानना चाहेंगे कि रेडियो से जो आपका जुड़ाव है वो कब हुआ और कैसे हुआ?
रेडियो में सर मैं सबसे पहले मैं यूट्यूब के माध्यम से ही जुड़ा पाया हूँ।
अच्छा,
क्योंकि मुझे छत्तीसगढ़ी गीत और पुराने गीतों का काफी शौकीन था बचपन से ही, जब मैं टेलर का करता था ना सर, तो टेलरों का तो एक ये है सर कि वो रेडियो के बिना रह ही नहीं सकते।
अच्छा हाँ, ये
क्योंकि वो काम करते करते रेडियो दिन भर उनके यहाँ चलता रहता था।
जी जी जी,
तो जिस जगह मैं टेलर काम कर रहा था वहाँ दिन भर विविध भारती का कार्यक्रम चलता था सर।
वाह बहुत बढ़िया,
तो उसी समय से मैं गीतों का काफी शौकीन था और छत्तीसगढ़ में आने के बाद मुझे छत्तीसगढ़ी के गीत संगीत काफी अच्छे लगने लगे सर, और इसी बीच में मैं छत्तीसगढ़ के जो रेडियो चैनल से जितने भी उनसे जुड़ा और हमारे आकाशवाणी से भी जुड़ा, और इसका सबसे बड़ा योगदान देना चाहता हूँ सर हमारे सरगांव से ही नसीम मोहम्मद जी, जिन्होंने मुझे इनसे जुड़ने का तरीका और सारी जानकारी दी।
वाह, नसीम मोहम्मद जी हमारे अरपा रेडियो के नियमित श्रोता हैं और बहुत ही सम्मानित होता है
जी सर।
तो अरपा रेडियो के कौन कौन से कार्यक्रम आप सुनते हैं?
सर मुझे सबसे अच्छा कार्यक्रम, ऐसे तो सभी कार्यक्रम अच्छे हैं सर, और किसी भी कार्यक्रम की आलोचना करना तो अच्छी नहीं है, लेकिन मुझे एक फेवरेट, मैं काफी इंतजार से वो कार्यक्रम सुनता हूँ और इंतजार करता हूँ, और दुख की बात ये सर कि वो हफ्ते में एक ही बार कार्यक्रम आता है।
अच्छा,
दो हफ्ते में एक ही बार कार्यक्रम आता है
जी, जी, जी।
उस कार्यक्रम का नाम है बुधवारी छत्तीसगढ़िया,
उसमें जो
मातृका मैडम की द्वारा दी गई जानकारी, उसमें गीत काफी पसंद आते हैं मुझे, और छत्तीसगढ़ी जो जनवला और शब्द है उनका तो कुछ और ही अलग ही बात है सर, उनको जो हम भूल गए हैं उन शब्दों को मैडम जी लेके आती है, उनको फिर सोचना पड़ता है क्या कहा जाए इनको हिंदी में जी सर, और अच्छे लगते सर कार्यक्रम बहुत हमें। वो
मातृका बहन हमारी बहुत मेहनत करते रहती है लगातार, मैं जब भी स्टूडियो जाता हूँ कुछ ना कुछ वो करते रहती है अपने कार्यक्रम के संदर्भ में, और उसी मेहनत का परिणाम है कि मातृका के द्वारा प्रस्तुत कार्यक्रम बुधवारी छत्तीसगढ़ आप सभी को पसंद आता है। तो इस बात के लिए आपके माध्यम से हम अपनी मातृका बहन को भी बहुत बहुत बधाई देते हैं कि आपकी पसंद और आपका कार्यक्रम जो है लोगों तक पहुंच रहा है। इसके साथ ही साथ हम ये भी जानना चाहेंगे कि कार्यक्रम का ये अंतिम पड़ाव है मितान जी, तो हमारे अरपा रेडियो के श्रोताओं के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे?
सर जो आपका अरपा रेडियो है सर बहुत लाजवाब सर, सुबह से हम कार्यक्रम में जुड़ जाते हैं सुनने के लिए, आपका जो अंदाज सर, आपका अंदाज ही बहुत निराला है सर, श्रोताओं से बात करने का, या चाहे आप मितान मन के पसंद ले लो या फिर फोनिंग कार्यक्रम ले लो सर, आपका भी एक बहुत अच्छा अंदाज है बात करने का सर, हमें बहुत पसंद आता है आपका अंदाज।
धन्यवाद मितान, आपका प्रेम है ये सब, तो बहुत ही अच्छा लगा मितान जी आपसे बात करके और आपके बारे में जान करके, हमें बहुत ही अच्छा लग रहा था और हमको तो लग रहा था कि हम बात करें आपसे और, पर समय सीमा को देखते हुए आज के कार्यक्रम को हम यही अब संपन्न करते हैं। आपने अपना कीमती समय दिया हमारे कार्यक्रम सप्ताह के श्रोता के लिए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
धन्यवाद सर, जाते जाते सभी श्रोताओं को एक बार फिर से रामनवमी की ढेर सारी शुभकामनाएं सर।
आपको भी ढेर सारी शुभकामनाएं। तो श्रोताओं ये थे हमारे आज के सप्ताह के श्रोता दीपेश वर्मा जी जो थे पीपरलोड से, इनसे हमने बातचीत की। आप ये बातचीत आपको कैसी लगी, हमारे कार्यक्रम में आप और किसे सुनना चाहते हैं, इस बारे में भी आप मुझे पर्सनल में जरूर बताएं ताकि हम उस श्रोता से बातचीत आप तक सुनवा सकें और कर सकें। तो अब आज के इस कार्यक्रम से दीजिए अनुमति अनीश श्रीवास को, स्वीकार करें हमारा नमस्कार।
आप सुन रहे हैं अरपा कम्युनिटी रेडियो 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर।